पृष्ठ संख्या 169, 14। गद्य के विकास के साथ एक और नया साहित्य माध्यम विकसित होता है, आलोचना। काव्य शास्त्र के रूप में इसकी एक परंपरा पहले से आती दिखती है, पर रचना को शास्त्र से जोड़ने वाली प्रक्रिया के रूप में आलोचना का विकास आधुनिक काल में ही होता है। यह आलोचना काव्य का शास्त्र नहीं, काव्य का जीवन है, जो बार बार रचा जाता है। नाटक के विकास के प्रसंग में यह देखा गया था कि अपने युग की केंद्रीय रचना वृत्ति से जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 के माध्यम से होता है, जहां नाटक का शास्त्रीय विवेचन और संक्षिप्त इतिहास प्रायः 60 पृष्ठों में दिया गया है। यहां केवल इतिवृत्त ही नहीं, नई और साहसिक आलोचना दृष्टि भी है। संस्कृत नाट्यशास्त्र का विवेचन करते हुए भारतेंदु लिखते हैं, संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान करना वा किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। ऐसी संतुलित और नवोन्मेष शालिनी दृष्टि के विकास को आरंभिक युग में समालोचना नाम ठीक ही दिया गया था। यद्यपि आगे चलकर आलोचना पद अधिक प्रचलित हो गया, यह संयोग से कुछ अधिक है कि हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत भी नाटक से हुई। भारतेंदु के नाटक शीर्षक निबंध के प्रकाशन के 3 वर्ष बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में प्रकाशित की और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में। इस रूप में हिंदी समालोचना ने अपने युग की केंद्रीय रचना वृत्ति को ठीक ठीक पहचाना। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में ध्यान दिया था कि आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत नाटकों से हुई। इसी क्रम में आगे कहा जा सकता है कि आधुनिक समालोचना का आरंभ भी नाटक को लेकर हुआ। आलोचना संबंधी गतिविधि क्रमशः पत्र पत्रिकाओं में तेज होती है। 1900 के आसपास सरस्वती, इलाहाबाद, सुदर्शन बनारस और समालोचक जयपुर का प्रकाशन आरंभ होता है, जहाँ नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से चलती है। नाटक के बाद ध्यान अब केंद्रित होता है नए विकसित माध्यम उपन्यास पर। इस संबंध में जो प्रश्न उठाए गए उन पर विविध पत्र पत्रिकाओं के बीच व्यापक बहस गति पकड़ती है। मुख्य विषय है उपन्यास में वर्णित यथार्थवाद के स्वरूप को लेकर। नया माध्यम और वह भी पश्चिम से आया हुआ होने के कारण तत्कालीन आलोचना ठीक ही अपना ध्यान उपन्यास पर केंद्रित करती है, समाज में उसके प्रभाव के व्यापक प्रश्न को सामने रखकर। नाटक और उपन्यास के उदय का विवेचन करते समय आलोचना के इस दायित्व निर्वाह का औचित्य बोध रेखांकित किया जा चुका है। पृष्ठ संख्या 170। संस्कृत काव्यशास्त्र और हिंदी के रीति काव्य में उसके अनुकरण पर किया गया विवेचन प्रधानतः सिद्धांत कथन था। रचनात्मक साहित्य का संदर्भ वहां अनुपस्थित था। हिंदी का आलोचनात्मक लेखन पृष्ठभूमि के रूप में इस वाङ्मय को स्वीकार करके भी स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि उसकी टकराहट शास्त्र से उतनी नहीं जितनी साहित्य से थी। यह ठीक है कि भारतेंदु की चेतावनी के बावजूद कि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटक आदि की शास्त्र चिंतन में पूर्ववत बनी हुई थी, पर रचनाकार बहुत बार उनके नियमों की अवहेलना करके अपना नया मार्ग निकाल रहे थे। हिंदी आलोचक अपनी निकटता इन रचनाकारों से अधिक मानता था बजाय संस्कृत के शास्त्रकारों से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु तथा पद्म सिंह शर्मा जैसे आलोचक संस्कृत प्रतिमानों की अवज्ञा न करते हुए भी अपनी सहानुभूति हिंदी लेखक के प्रति रखते थे, और इसी के कारण संस्कृत के अमूर्तन प्रिय काव्य शास्त्र से अलग हिंदी की अपनी व्यवहारिक आलोचना विकसित हो सकी। इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण की सही सराहना करते हुए निर्मला जैन अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी की भूमिका में लिखती हैं, हिंदी आलोचना के विकास की सही समझ के लिए साहित्य संबंधी हर संभव अध्ययन के बीच ठेठ आलोचना का स्पष्ट बोध आवश्यक है। अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत निरूपण, इतिहास आदि आलोचना के लिए उपयोगी होते हुए भी आलोचना नहीं है। आलोचना के इस वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन हिंदी के साहित्य अनुशीलन के विकास क्रम के अंतर्गत काफी पहले हो गया था। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार भी हैं, इस विषय में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध पहले प्रकाशित हो चुका था, फिर भी शुक्ल जी ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन को ही दिया, क्योंकि समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। इस दृष्टि से आलोचना या कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में समालोचना के विकास की 2 शर्तें हैं। एक तो यह कि उसका मुख्य संदर्भ रचनात्मक साहित्य हो न कि शास्त्र, और दूसरे यह कि संदर्भ मुख्यतः समकालीन साहित्य से जुड़ा हो, फिर भले उस विश्लेषण के अंतर्गत नया पुराना समूचा साहित्य आता हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से समकालीन साहित्य को देखने परखने का सहज सुयोग प्राप्त हुआ। वे बराबर नव प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा करते रहे, जिसके लिए तब समालोचना शब्द प्रचलित था। अपने संपादन काल के बाद भी उनका यह क्रम चलता रहा। 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से उन्होंने अपनी 20 ऐसी समालोचनाओं का संकलन प्रकाशित किया। इसके आरंभिक निवेदन में आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, इस संग्रह में निवेदनकर्ता की जो समालोचना जिस समय निकली थी उसका उल्लेख उसी के नीचे कर दिया गया है। आलोचनाएं अधिकतर हिंदी की ही पुस्तकों की हैं, पर कुछ संस्कृत पुस्तकों और उनके अंश विशेषों की भी हैं। दो एक आलोचनाएं अन्य भाषाओं की पुस्तकों की भी हैं। आगे चलकर लेखक ने यह भी प्रकार अंतर से स्पष्ट कर दिया है कि समालोचना की इस परिपाटी का आरंभ स्वयं उसी के द्वारा हुआ है। उसके लिए यही क्या कम संतोष की बात है कि उसके सदृश अल्पज्ञ द्वारा प्रदर्शित मार्ग पहले की अपेक्षा अब पृष्ठ संख्या 171 अधिक प्रशस्त हो गया है और होता जा रहा है। समुच्चय में संकलित समीक्षाएं अधिकतर प्राचीन काव्य और ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों के संदर्भ में हैं। समकालीन रचनात्मक साहित्य पर प्रायः कुछ भी नहीं लिखा गया है। हिंदी साहित्य से सीधे संबद्ध ग्रंथों में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न है। यह इस संग्रह की सबसे बड़ी समीक्षा है, प्रायः 50 पृष्ठों में लिखी हुई और सरस्वती के जनवरी फरवरी 1912 अंक में प्रकाशित। यहाँ दोष दर्शन प्रमुख है, यथा भाषा दोष, वाक्य और वाक्यांश दोष, शब्द दोष, फुटकर दोष। अंत में समीक्षक ने इस दोष दर्शन का औचित्य भी स्पष्ट किया है। गुणों की अपेक्षा दोषों का विशेष विस्तार से दिखाने का कारण यह है कि अपनी रचना की त्रुटियां किसी को जान ही नहीं पड़ती। यह इस पुस्तक के लेखकों की ही राय है। इस आरंभिक समालोचना का रूप कैसा था, इसे स्पष्ट करने के लिए हिंदी नवरत्न की समीक्षा से कुछ अंश और उद्धृत करना उपयोगी होगा। इससे एक ओर आचार्य द्विवेदी की समीक्षा शैली का कुछ पता चलेगा और कुछ यह भी अनुमान हो सकेगा कि उस युग के बड़े लेखकों की आपस में छेड़छाड़ कैसी चलती थी। संदर्भ भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जिन्हें ग्रंथ लेखकों ने एक रत्न माना है। समीक्षक उनके विवेचन पर टिप्पणी करते हुए कहता है, हरिश्चंद्र के विषय में आप लोग लिखते हैं, हम भाषा के नौ प्रसिद्ध और सर्वोत्तम कवियों में इनको भी समझते हैं। समझिए, पर समझना एक बात है, समझाना दूसरी बात। यदि आपकी यह इच्छा हो कि आपकी बात और कोई भी मान ले, तो हिंदी के इतिहास में आप इस बात को युक्ति और तर्क द्वारा सिद्ध कीजिए कि कैसी और कितनी उत्तमता के कारण आपने मतिराम को भी रत्न समझा और हरिश्चंद्र को भी। सरस्वती संपादक की व्यंजना है कि आधुनिक काल में विविध विधाओं का नए ढंग से प्रयोग करने वाले भारतेंदु और पुराने पंथ के पथिक मतिराम के बीच कोई सार्थक तुलना नहीं हो सकती, खासतौर से जब वह मतिराम के पक्ष में भारी हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी इतिवृत्त प्रधान कविता के पुरस्कर्ता हैं, वैसे ही इतिवृत्त परक आलोचना के भी। रचना और आलोचना एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हैं, इसका बड़ा अच्छा विकासात्मक अध्ययन आचार्य द्विवेदी से लेकर आधुनिक समीक्षा तक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अलग अलग युगों के तीन सांध्य चित्रों को लिया जाए। हरियोत का प्रिय प्रवास संध्या के वर्णन से खुलता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तत्सम शब्दावली के बावजूद वर्णन पूरी तरह इतिवृत्त परक है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के यहाँ संध्या के यही रंग दूसरी तरह अंकित होते हैं। तरु शिखरों से वह स्वर्ण विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग, किस गुहा नीड़ में रे से किस मग, एक तारा। हरिओत ने तरु शिखा पर जो प्रभा सीधे सीधे देखी थी, वह अब पंथ के लिए तरु शिखरों पर स्वर्ण विहग के लाक्षणिक प्रयोग में संक्रांत हो गई है। आगे नई कविता के युग में शमशेर बहादुर सिंह संध्या के सुनहलेपन में पीलेपन की छाया अधिक गहरी देखते हैं, पृष्ठ संख्या 172। एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध्य तारक सा अतल में, एक पीली शाम। फिर उससे बड़ी बात यह कि शमशेर के लिए संध्या का अनुभव और संश्लिष्ट हो गया है। हरियोद संध्या को सीधे घटना के रूप में उतरते देखते हैं, पंथ के लिए अनुभव की परत दोहरी होती है, जब डूबते सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटी पर एक सुनहरे पक्षी में बदल जाती हैं। शमशेर के यहाँ पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, आँख में अटका हुआ आंसू और अतल में डूबता सांध तारक मिलकर एक जटिल और संश्लिष्ट अनुभूति बनते हैं। एक विधान कई स्तरों पर अनुभूति को एक साथ प्रवाहित कर रहा है। आधुनिक हिंदी कविता में लंबे इतिवृत्त और वर्णनों को सूक्ष्म सांकेतिक बिंब कैसे धीमे धीमे पदच्युत करते हैं, इसका बड़ा सटीक अध्ययन इन सांध्य चित्रों के बीच किया जा सकता है। कविता में इस विकास के समानांतर आलोचना में कविता की विकसनशील समझ परिलक्षित होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कवि और कविता, जिस पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। यहाँ स्पष्ट ही बहुत मोटे तौर पर से अभिप्राय आचार्य द्विवेदी की इतिवृत्त प्रधान शैली से है, जिसे लेकर आचार्य शुक्ल के मन में गहरा असंतोष है। छायावाद के साथ चलने वाले रामचंद्र शुक्ल इसी से मिलते जुलते विषय पर निबंध लिखते हैं, कविता क्या है, जिसमें विवेचन सूक्ष्म रहे इसके लिए सजग रहकर वे इस निबंध का कई किश्तों में परिष्कार करते हैं और जो उनकी कविता संबंधी गहरी समझ का बुनियादी लेखन होता है। आधुनिक आलोचक नए कवि का समान धर्मी रहा है और जब वह समकालीन कविता की दशा पर लिखने को उद्यत होता है तो यह सारा पूर्व विकास क्रम उसके सामने है। वह भी आचार्य शुक्ल की तरह अपने विवेचन का परिष्कार रचना के बीच से करता है, न कि शास्त्र की घराती छाया में। काव्य भाषा और आलोचना भाषा के विकास में तालमेल रहे तो यह उचित ही है। यह निरा संयोग नहीं कि जब नई कविता में अर्थ की परत सघनतर होती है तो समकालीन आलोचक प्रभावाभिव्यक्ति व्याख्या और निर्णय के आगे रचना में अर्थ संवर्धन को आलोचना का मुख्य दायित्व मानता है। पूर्वापर क्रम में आचार्य द्विवेदी आलोचना के विकास को कहां और कैसे समृद्ध करते हैं, यह समझने के लिए हमें स्मरण रखना होगा कि भारतेंदु की आधुनिक वृत्ति अधिकतर गद्य रूपों, पत्रकारिता और उसके माध्यम से व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों को लेकर विकसित हुई थी। कविता के क्षेत्र में नए के प्रति कुछ कौतूहल रखते हुए भी वे सामान्यतः मध्यकालीन भक्ति और रीति के संस्कारों में बंधे रहते हैं। कविता और गद्य के बीच का यह द्वैत और उससे उत्पन्न समस्या को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ठीक समझा। भारतेंदु मूलतः कवि थे और उनका गद्य लेखन बहुत बार कविता से रंजित रहता था। आचार्य द्विवेदी गद्यकार थे और वे कविता को गद्य से दूर नहीं होने देना चाहते थे। उनका सिद्धांत था कि बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। पृष्ठ संख्या 173। इस प्रक्रिया में वे कविता को उत्तर रीतिकालीन काव्य रूढ़ियों और चमत्कार कौशल से अलग करके सामान्य व्यवहारिक जीवन के निकट लाना चाहते थे। अपने सहज ज्ञान से उन्होंने समझ लिया था कि काव्य भाषा को बदले बिना संवेदना में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। एक सिद्धांत जिस पर बाद में आधुनिक आलोचना ने विस्तार से विचार किया है, इसलिए संवेदना के जिस बिंदु को झकझोरने में भारतेंदु हिचके थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी क्षेत्र के पिछड़ेपन के निदान में वही उंगली रखी। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा ने आचार्य द्विवेदी के रीतिवाद विरोधी अभियान को सही रेखांकित किया है। यह स्मरणीय है कि सरस्वती के जन्म के समय से ही, अर्थात स्वयं उसके संपादक बनने से पूर्व, वे एक ओर नायिका भेद की अप्रासंगिकता स्पष्ट करते हैं, साथ ही साथ गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक न होना चाहिए इस पर बल देते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि ये दोनों स्थितियाँ तत्वतः एक हैं। यहाँ कविता और गद्य की भाषा के पार्थक्य को मिटाने की मांग एक निगाह में अंग्रेजी रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत की याद दिला सकती है, पर वर्ड्सवर्थ के लिए मूल समस्या भाषा, लय और शब्द समूह की थी। आचार्य द्विवेदी की चिंता रीतिकालीन संस्कारों से मुक्ति पाने की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी यदि भाषा की व्यवस्था और साहित्यिक सुरुचि के नियमन में लगे हुए थे तो मिश्र बंधु भी काव्य निर्णय के क्षेत्र में अपने को शास्त्रता की भूमिका में देख रहे थे। हिंदी नवरत्न 1910 का उल्लेख पहले हो चुका है, जो इस दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास था। यहाँ संपूर्ण हिंदी काव्य में से चुनकर सर्वश्रेष्ठ 9 कवियों को संकलित करके उनका श्रेणी विभाग किया गया और इसके लिए परीक्षा पद्धति के अनुसार अंक दिए गए। अपने आप ऐसी निर्णय पीठ बना लेने के पीछे किसी सीमा तक मिश्र बंधुओं की उस जमाने की उच्च शिक्षा पुस्तक में नवरत्न की समीक्षा करते हुए आचार्य द्विवेदी ने उल्लेख किया था, अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा पाए हुए पंडितों में हिंदी का प्रेम होना ही बहुत बड़ी बात है। पुस्तक बंद। और वंशगत अभिजात्य भी कारक हुए होंगे, पर दोनों जगह अनुशासन प्रक्रिया भिन्न है। मिश्र बंधु के लिए निर्देशक सिद्धांत अधिकतर मध्ययुगीन काव्य मूल्य हैं, देव उनके प्रिय कवि हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी कविता की परख मूलतः समकालीन संदर्भों में करना चाहते हैं। हिंदी नवरत्न की ही दृष्टि आगे प्रकाशित मिश्र बंधु विनोद में सक्रिय होती है, यह आशंका महावीर प्रसाद द्विवेदी को पहले से है। नवरत्न की समीक्षा के उपसंहार में वे लिखते हैं, लेखकों ने यदि हिंदी का इतिहास लिखकर प्रकाशित करने की सूचना न दी होती तो हम इतनी लंबी समालोचना लिखने की आवश्यकता भी न समझते। अब यदि इस लेख में कुछ भी सार हो तो उसे ग्रहण करके लेखक महोदय हिंदी साहित्य के इतिहास को निर्दोष बनाने की चेष्टा करें, और यदि न हो तो जाने दें। मिश्र बंधु विनोद 1913 वृत्त और कवि कीर्तन से आरंभ होकर हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप लेता है। इसके लेखकों की रुचि नवरत्न में भी और विनोद में भी तुलना और निर्णय की है। आलोचना की जो दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से सहज जुड़ी हुई हैं, मिश्र बंधु गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र का कार्य आलोचना और साहित्य इतिहास के क्षेत्र में आरंभिक पर महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि आचार्य द्वय, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के व्यंग और कटुक्तियों के वे बराबर पात्र रहे, जिसका मुख्य कारण शायद उनकी कठोर निर्णयात्मक मुद्रा हो, जो आलोचना की अपनी सुकुमार प्रक्रिया के बहुत अनुकूल नहीं पड़ती। एक अन्य कारण मिश्र बंधुओं की साहित्यिक समझ से भी जुड़ा हो सकता है, जो रीतिकालीन संस्कारों से पोषित थी, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल विनोद लेखकों जैसे अंग्रेजों की उच्च शिक्षा पाए बिना भी नए युग के आलोक में संपूर्ण साहित्य प्रक्रिया की व्याख्या में संलग्न थे। मिश्र बंधु संधिकालीन हिंदी क्षेत्र की उस मध्यवर्गीय मानसिकता के प्रतीक थे, जहां भक्ति के लिए सूर तुलसी के पद अनिवार्य थे, तो सामान्य गृहस्थ जीवन यापन के लिए रीतिकालीन कविता सवैये विनोद का साधन थे। उनकी इसी रुचि का परिणाम था कि वे सूर तुलसी की टक्कर में ही देव को रखना चाहते थे, जो प्रतिज्ञा न द्विवेदी को स्वीकार थी और न शुक्ल को। मिश्र बंधु यदि अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त थे तो इस युग के दूसरे प्रभावशाली आलोचक पद्म सिंह शर्मा संस्कृत परंपरा के पंडित थे। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव थे और पद्म सिंह शर्मा के बिहारी। यह ध्यान देने की बात है कि इस युग की आलोचकीय मानसिकता अधिकतर रीतिकालीन कविता के सहारे बनी थी। संस्कृत, उर्दू, फारसी और रीतिकालीन कविता के संस्कार जहां एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के माध्यम से अपने काव्य मूल्य स्थापित करना चाहते थे। अन्य आलोचकों का झुकाव भी कुछ बदलते अनुपात में इसी प्रकार का था। मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र तथा लाला भगवान देव की आलोचना प्रणाली के केंद्रीय कवि व्यक्तित्व थे देव, बिहारी, मतीराम या केशवदास। अकेले महावीर प्रसाद द्विवेदी इस धारा से अलग थे। हिंदी नवरत्न की समीक्षा करते हुए वे पुराणों में सूर और तुलसी को महत्व देते हैं। हिंदी में यदि कोई कवि रत्न कहे जाने योग्य कवि या महाकवि हुए हैं तो वे सूर और तुलसी ही हैं, और नयों में हरिश्चंद्र को। जिन हरिश्चंद्र ने भिन्न भिन्न विषयों के कितने ही गद्य पद्यात्मक काव्य, नाटक और इतिहास आदि लिखे, और जिनकी बदौलत हिंदी भाषा ने एक नया रूप पाया, कहना न होगा कि हिंदी आलोचना जिसके समर्थ प्रतिनिधि आगे रामचंद्र शुक्ल हुए, आचार्य द्विवेदी के ही मार्ग पर चलती है। आचार्य शुक्ल ने सूर, तुलसी और भारतेंदु तीनों का स्वतंत्र आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। पद्म सिंह शर्मा के आलोचकीय व्यक्तित्व में कई तत्वों का बड़ा विलक्षण संयोग हुआ था। वे आर्य समाज के उपदेशक थे, संस्कृत साहित्य के पंडित, फारसी उर्दू काव्य के अच्छे मर्मज्ञ और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के सहृदय अध्येता। आलोचक का पहला गुण सहृदयता उनमें प्रचुर मात्रा में था, और स्वभाव से विद्या व्यसनी होने के नाते उनका अध्ययन अत्यंत व्यापक था। बिहारी सत्सई नाम से दो भागों में उन्होंने सत्सई का अध्ययन बड़े सहृदय पांडित्य के साथ प्रस्तुत किया। मिश्र बंधुओं ने जहां देव को महत्व दिया था, वहां पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को रखा। समकालीनों में उन्होंने ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न तथा नवनीत लाल चतुर्वेदी का आलोचनात्मक परिचय लिखा, और प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर इलाहाबादी का अमीर खुसरो के फारसी काव्य का विस्तृत अध्ययन उन्होंने एक लंबे निबंध में प्रस्तुत किया। ऐसे व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप तुलनात्मक विवेचना वे जगह जगह करते चलते हैं। खुसरो के शेर पर उन्हें बिहारी का दोहा याद आता है, और बिहारी के प्रसंग में प्राकृत काव्य अनेक भाषाओं में लिखे होने पर भी उनके लिए कविता की सत्ता एक है। पर इतनी व्यापक सहृदयता के बावजूद आधुनिक खड़ी बोली काव्य के लिए उनके मन में रुझान नहीं बना। आधुनिक काल में ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी के प्रसंग में लिखते हुए पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, आपके मुख से ब्रजभाषा की रस भरी कविता सुनकर मन मस्त हो जाता है, और आजकल के गुले नौ बहार, कविता बसंत वाटिका के नए फूल सचमुच निर्गंधा एवं किंसुका से प्रतीत होने लगे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर अधिवेशन के समय अभिभाषण में पृष्ठ संख्या 175 उन्होंने नवीन कविता के प्रति अपना अविश्वास स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था। कविता में परिवर्तन खंड के अंतर्गत उन्होंने कहा, हिंदी की नवीन कविता में भाषा, भाव, शैली सभी कुछ नया है, अपरिचित है। वह कुछ कह रहे हैं यह तो सुन पड़ता है, पर क्या कह रहे हैं यह समझ में नहीं आता। इस अभिभाषण में उस समय के नए कवियों और आलोचकों को काफी उत्तेजित किया था। रामनाथ लाल सुमन ने निराला को 1928 के एक पत्र में लिखा, तुम अभिभाषण की विस्तृत समालोचना लिखो, मुझे तो मेरे मित्र को दो एक महीना चुप रहने को कह रहे हैं, यद्यपि कुछ लिखना मुझे आवश्यक जान पड़ रहा है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने व्यवस्थित आलोचना के क्रम में रीतिकालीन कवियों पर अध्ययन प्रस्तुत किए, पर माधुरी और समालोचक जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते हुए वे समकालीन साहित्य और उसके विवादों के सीधे संपर्क में रहे। 1926-30 के बीच छायावाद संबंधी चर्चा परिचर्चा जब अपने तीव्रतम रूप में थी, तब वे भी एक संपादक के रूप में उसमें भागीदारी कर रहे थे। निराला की प्रसिद्ध लेखमाला पंत जी और पल्लव इन्हीं के कार्यकाल में माधुरी में प्रकाशित हुई थी। मिश्र बंधुओं ने अपने काव्य निर्णय में देव को केंद्र में रखा था, पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को। कृष्ण बिहारी मिश्र देव ने देव और बिहारी शीर्षक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके पद्म सिंह शर्मा के तर्कों का प्रत्याख्यान किया और देव बिहारी विवाद को एक नए धरातल पर पहुंचाया। मतिराम ग्रंथावली की भूमिका में रीति काव्य के वैशिष्ट्य को मतिराम के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया गया। इस भूमिका में मतिराम की काव्य भाषा को आलोचकों ने कई दृष्टि से परखा है और अंततः वह इस निर्णय पर पहुंचता है। इस भाषा के कवियों में जहां तक भाषा सौंदर्य का संबंध है, वहां तक कविवर मतिराम जी से बढ़कर अच्छी भाषा लिखने में कोई भी कवि समर्थ नहीं हुआ है। इसके कहने में हमें कुछ भी संकोच नहीं कि सूर, तुलसी, देव, बिहारी और पद्माकर आदि कोई भी कवि भाषा सौंदर्य में मतिराम को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। पृष्ठ संख्या 74। इसके पूर्व भूमिका लेखक ने कविता की भाषा के संबंध में अपना सामान्य मंतव्य इस प्रकार प्रकट किया है। कविता की भाषा में लचकीलापन, सामंजस्यपूर्ण भाषा प्रवाह एवं अलंकार प्रस्फुटन की पात्रता होनी चाहिए। पृष्ठ 21। 50 वर्ष पूर्व निर्धारित काव्य भाषा की इस कसौटी से मतभेद हो सकता है या इसे और परिष्कृत किया जा सकता है। मतिराम की काव्य भाषा की श्रेष्ठता के बारे में कृष्ण बिहारी मिश्र का जो मत है उसके संबंध में आज अतिरंजित प्रशंसा का भाव लग सकता है, पर इन टिप्पणियों से इतना स्पष्ट है कि मतिराम की काव्य भाषा को जिस रूप में सराहना के लिए उठाया गया है वह चुनाव सही है। तुलनात्मक आलोचना को पुरस्कृत करने वाले आलोचकों की स्वयं तुलना करके इस प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। पृष्ठ 461। देव बिहारी विवाद के अंतिम चरण में लाला भगवान दीन आते हैं, जिन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी के जवाब में बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त कई रीतिकालीन काव्यों की उन्होंने टीकाएं लिखी और उनका संपादन किया। इनमें से केशवदास की रामचंद्रिका की टीका विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। इस युग के आलोचकों की मानसिकता अधिकतर रीतिकालीन काव्य से बनी। इसका एक कारण यह भी था कि रीति ग्रंथों में जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत कथन था उसका व्यवहारिक प्रयोग उन्हीं कवियों पर किया जाए, यह सुगम भी था और एक तरह से तर्कपूर्ण भी। व्यवहारिक पृष्ठ संख्या 176। आलोचना के कुछ नए तत्व इन आलोचकों ने अपनी ओर से जोड़े, पर मुख्यतः ढांचा पुराना ही था। इस दौर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि सिद्धांत चर्चा के आगे व्यवहारिक आलोचना का एक पुष्ट आधार तैयार हो गया। भले ही आलोचना की प्रणाली यहाँ प्रभावाभिव्यंजक, तुलनापरक और निर्णयात्मक थी, रचना के अपने वैशिष्ट्य का विश्लेषण और उसका मूल्यांकन अगले चरण में विकसित होने के लिए रहे। छायावाद युग को रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक मिला तो यह दोनों ओर से औचित्यपूर्ण था। उन्होंने हर रूप में आलोचना को आधुनिक बनाया। शास्त्र और द्विवेदी युगीन कोरे रचनाकार के संदर्भ से हटकर उन्होंने रचना को अपने विवेचन का केंद्र बिंदु बनाया, जिसके लिए इतिवृत्त कथन से आगे संश्लिष्ट छायावादी विधान ने अपने को प्रस्तुत किया। रामचंद्र शुक्ल न संस्कृत के पंडित थे और न उनके पास अंग्रेजी की डिग्री थी। अपनी मानसिकता बनाने में उन पर कोई दबाव न था। यूं इन दोनों प्रतिष्ठित भाषाओं का ज्ञान उन्हें ऐसा था कि उनसे काम भर की सामग्री वे बराबर ले सकते थे। अंग्रेजी में तो वे तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रों में लिखते भी थे और उससे उन्होंने अनुवाद भी कई प्रकार के किए थे। अंग्रेजी के अलावा कुछ थोड़ा अनुवाद बंगला से किया था, पर संस्कृत ज्ञान उनका शायद ऐसा व्यवस्थित न था कि वहां से कुछ अनुवाद करते। स्फुट लेखन उन्होंने सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका में आरंभ किया। सरस्वती पत्रिका के एकदम आरंभिक वर्षों में कई निबंध साहित्य और कविता के सामान्य स्वरूप पर प्रकाशित होते हैं। हिंदी काव्य श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य रामचंद्र शुक्ल। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पृष्ठभूमि में रामचंद्र शुक्ल का निबंध आता है कविता क्या है, 1909 की सरस्वती में। अपनी युवावस्था के आरंभिक दिनों में उन्होंने जो यह प्रश्न छिड़ा, परिपक्वावस्था तक वैसे वे अपने इसी प्रश्न और उसके उत्तर दोनों का परिष्कार करते रहे। कई बार इस बुनियादी निबंध को लिखकर और संवार कर तथा वीर गाथा काव्य में से लेकर 1940 में उत्तर छायावादी काव्य के व्यवहारिक विवेचन तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवि और कविता से वे असंतुष्ट थे, यह बात उन्होंने अपने इतिहास में स्पष्ट कर दी है। इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। मिश्र बंधुओं की आलोचनात्मक क्षमता के प्रशंसक वे कभी नहीं रहे। जो 10 वर्ष तक सरस्वती में विचारों की हार देखकर उन्होंने कुछ अपनी भी चिंतन सामग्री यहाँ सजा दी, जो तभी से बराबर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखन या कि इतिहास में कहीं साहित्येतर मानदंड स्वीकार नहीं किए। उनकी प्रिय रचना तुलसी का रामचरितमानस रही और अधिकतर उसी में से उन्होंने अपने काव्य मूल्य विकसित किए, जिस रचना के बारे में स्वयं कवि ने कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा। विलक्षण बात यह है कि इसके बावजूद उन्होंने अध्यात्म को काव्य और कला के विवेचन में कहीं प्रासंगिक नहीं माना। अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में वे लिखते हैं, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई कहीं जरूरत नहीं है। दूसरी ओर निरय उपयोगितावाद की कसौटी भी वे अस्वीकार कर देते हैं। अपने चिंतन के केंद्रीय निबंध कविता क्या है में वे स्पष्ट कहते हैं, सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। इस प्रकार अध्यात्म और पृष्ठ संख्या 177 उपयोगितावाद दोनों ओर के दबाव से रचना को मुक्त करके उसे उन्होंने स्वायत्त रूप में प्रतिष्ठित किया। जैसा संकेत किया गया, अपने विवेचन में न तो वे क्लासिक चिंतन प्रणाली के अनुसार शास्त्र को प्रधानता देते हैं, न रोमांटिक भावधारा के अनुकूल रचनाकार को। वे आधुनिक साहित्य चिंतन के क्रम में रचना को केंद्र में रखते हैं। यहाँ भी वे अतिरिक्त सावधानी यह बरतते हैं कि महत्व रचना का रहे, न कि रचना के पाठ का, जैसा कि इधर कई नए समीक्षक आग्रह करते दिखाई देते हैं। वे इस आत्यंतिक प्रणाली से परिचित थे जिसके अंतर्गत कृति की सत्ता कवि और श्रोता या पाठक दोनों से स्वतंत्र ठहराई जाने लगी। कृति की ऐसी स्वतंत्र सत्ता आचार्य शुक्ल को स्वीकार नहीं, वे रचना को स्वायत्त मानते हैं, स्वतंत्र नहीं। कवि, समाज, श्रोता या पाठक और कृति की अंतर प्रक्रिया में वे कृति या रचना को आलोचना के केंद्र में रखना चाहते हैं। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के काव्य विवेचन में रचना की स्वायत्त सत्ता है, न वह अध्यात्म से बाधित है और न उपयोगितावाद से, पर दूसरी ओर वह अपने रचनाकार और समाज से स्वतंत्र नहीं है। आलोचना की तरह ही अपने इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल किसी साहित्येतर आधार को स्वीकार नहीं करते। आदिकाल के विविध मुखी साहित्य में उन्होंने केंद्र में वीर गाथा काव्य को रखा, जो सच्चे अर्थों में ऐहिक काव्य है। परवर्ती कई इतिहासकारों ने जैनों, सिद्धों और नाथों के साहित्य को अधिक महत्व देना चाहा, पर आचार्य शुक्ल की दृष्टि में वह धार्मिक और सांप्रदायिक काव्य है और इस दृष्टि से साहित्य की केंद्रीय प्रकृति को प्रकट नहीं करता। आदिकाल में जैसे वे धर्म और अध्यात्म के आक्रांतकारी प्रभाव के प्रति सजग हैं, आधुनिक काल में वैसे ही राजनीति के। आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल किया, जैन बौद्ध काल या किसी सिद्ध सामंत काल नहीं। आधुनिक काल का नाम उसी प्रकार उसी न्याय से दिया, गद्य काल, स्वतंत्र संघर्ष काल या कि पुनर्जागरण काल नहीं। आधुनिक काल के अंतर्गत राजनीतिक आग्रहों से मुक्त रहने की विशेष चिंता वे तब करते हैं जब उपन्यास साहित्य के विवेचन में प्रवृत्त होते हैं। गद्य साहित्य की वर्तमान गति के अंतर्गत उपन्यास कहानी पर विचार करते हुए वे लिखते हैं, कहने का तात्पर्य यह कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गढ़ाकर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। रोचक बात यह है कि इस युग का उपन्यासकार स्वयं इस खतरे के प्रति साहित्यकारों को आगाह कर रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 में अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण एक प्रकार से प्रेमचंद का अंतिम वक्तव्य और वसीयत है। यहाँ अपनी दो टूक शैली में वे कहते हैं, वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। अपने युग के सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े उपन्यासकार के दृष्टिकोण में यह साम्य हिंदी लेखक के अपने व्यक्तित्व में निष्ठा का बड़ा प्रीतिकर प्रमाण है। रामचंद्र शुक्ल का समकालीन राजनीति के प्रति रवैया इस बात से भी प्रकट होता है कि अपने लेखन में वे मार्क्स का उल्लेख नहीं करते। विदेशी चिंतकों को उन्होंने बड़े मनोयोग से पढ़ा था और अपने विवेचन क्रम में वे बराबर उनसे टकराते हैं। फ्रॉयड, हैकेल, शोपेनहावर जैसे दार्शनिक, क्रोचे, डंटन, रिचर्ड्स जैसे आलोचक, एलियट तथा कमिंग्स जैसे कवि, जिनमें से अधिकतर आचार्य शुक्ल के समकालीन थे और संपूर्ण यूरोपीय परिदृश्य पर अत्यंत सक्रिय, उनका उल्लेख और साधिकार विवेचन वे बार बार करते हैं, पर मार्क्स को अपने विचार परिधि में वे स्वीकार पृष्ठ संख्या 178 नहीं करते। इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि 1936 में यद्यपि सोवियत प्रभाव में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी, पर प्रगतिवाद को अपने विवेचन में उन्होंने मान्यता नहीं दी। उनके प्रिय कवि तुलसी की वाणी जैसे कविता में प्राकृत जनों राजाओं रानियों के गुणगान से परहेज करती है, उनकी अपनी लेखनी वैसे ही साहित्यिक विवेचन में राजनीतिक कर्मियों से। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का एक पक्ष उनकी कविताओं में उभार कर आता है, जिस ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया गया है। यह जानना रोचक है कि छायावाद को लेकर चलने वाले वाद विवाद में उन्होंने अपना पक्ष कई बार कविता में प्रस्तुत किया। छायावाद के संबंध में वे उक्तियां कहीं कहीं उनकी आलोचना से तीखी हैं। जो कुछ आलोचना के रूप में वे सीधे सीधे नहीं कहना चाहते थे, उसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यंग शैली में कहा है। इस संदर्भ में यह विलक्षण बात है कि कविता से उनकी आलोचना नरम है। उदाहरण के लिए कुछ कवित्वों के अंश प्रस्तुत हैं। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीरव रुदन नृत्य, देख अपनी ही तंत्री तार वे बजाते हैं। साहित्य के विवाद मूलक प्रश्नों को लेकर नहीं, कविता की रचना प्रक्रिया जैसे नाजुक विषय पर भी उन्होंने छंदों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। हृदय का मधुर भार से कुछ पंक्तियां और उद्धृत हैं। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो, तब कविता का सत्य पल। यह रचना क्षण का विवेचन है। हृदय का मधुर भार में जो विरोधाभास है, वह आधुनिक अर्थ की द्वंद्व प्रक्रिया का पूर्व रूप ही है। वैसे ही जैसे यह कविता कविता पर लिखी गई कविता का। आचार्य शुक्ल की कुछ भंगिमाओं से उनके बारे में यह पूर्वाग्रह बन गया है कि छायावाद के वे विरोधी थे या उस कविता के प्रति उनकी सहानुभूति न थी। यह ठीक है कि काव्य में रहस्य भावना की स्वीकृति उन्हें प्रिय नहीं थी, न तो मध्यकालीन काव्य में और न ही आधुनिक काव्य में। रहस्य को वे साधना की उपयुक्त अनुभूति मानते थे, कविता की नहीं। कविता में उसका प्रवेश उनके अनुसार सामी धर्मावलंबियों से हुआ, जो आधुनिक काल में अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से बंगाल के ब्रह्म समाजियों और रविंद्रनाथ के माध्यम से हिंदी तक पहुंचा। छायावाद को उन्होंने दो रूपों में देखा। इतिहास में नई धारा के अंतर्गत छायावाद शीर्षक खंड में विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। आलोचक की सहानुभूति और समझदारी दूसरे अर्थ पृष्ठ संख्या 179 के पक्ष में है, जिसकी मुख्य विशेषता उसकी दृष्टि में लाक्षणिकता या चित्रभाषा शैली है। यह चित्रभाषा प्रयोग प्रतीक और बिंब जैसे नए अप्रस्तुत विधान के लिए है, और इस संदर्भ में आलोचक के अनुसार छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। यहाँ छाया शब्द का अर्थ आध्यात्मिक संदर्भ से अलग करके उसे भाषिक संदर्भ में ग्रहण किया गया है। रहस्यवाद के विदेशी बनाम भारतीय स्रोत की स्थिति पर मौलिक मतभेद रखने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल और छायावाद के वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद इस प्रसंग में एक दूसरे के निकट हो जाते हैं। छायावाद की प्रसाद द्वारा दी गई व्याख्या रामचंद्र शुक्ल के बहुत अनुकूल है। धन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। छाया शब्द की व्युत्पत्ति को केंद्र में रखकर और उसे मूलतः शब्द प्रयोग की छाया से जोड़कर छायावाद की ये दोनों व्याख्याएं एक दूसरे से बहुत मेल खाती हैं। ऐसा मेल जो आलोचक और रचनाकार के बीच कम देखने को मिलता है। हिंदी आलोचना ने अधिकतर छायावाद और रहस्यवाद के बीच विवेक किया है। आचार्य शुक्ल का संकेत इस संदर्भ में स्पष्ट है। वस्तुतः रहस्यवाद मानव संस्कार की एक व्यापक प्रवृत्ति है, जो अनेक देशों और कालों में विविध मानवीय अभिव्यक्तियों जैसे धर्म, दर्शन, कर्मकांड, कला, कविता आदि में अपने को विवृत करती है। छायावाद हिंदी कविता की एक विशेष प्रवृत्ति है, जिसमें रहस्यवाद की भावना का कहीं कहीं समावेश है। रहस्यवाद परम तत्व के सीधे साक्षात्कार का यत्न है, छायावाद में उसकी छाया के विविध चित्र हैं। इसलिए एक का मुख्य क्षेत्र साधना है, जबकि दूसरे का कविता। ये दोनों प्रवृत्तियां बहुत बार एक दूसरे को छूती काटती चलती हैं। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के छायावाद संबंधी विवेचन में कोई खास पूर्वाग्रह समझ में नहीं आते। उनका यदि कुछ पूर्वाग्रह है तो रहस्यवाद को लेकर, और वह भी कविता के क्षेत्र में प्रयुक्त होने पर। अज्ञात की लालसा या अज्ञात के प्रति प्रेम को वे संभव नहीं मान पाते। अपनी इस मान्यता को उन्होंने जगह जगह और कई रूपों में बलपूर्वक स्पष्ट किया है। एक कविता में वे कहते हैं, सचमुच ही यदि प्रेम कहीं है, ज्ञात छोड़ वह कहीं नहीं है। सैद्धांतिक रूप में इस बात को उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध काव्य में रहस्यवाद के अंतर्गत इस प्रकार व्याख्यायित किया है। तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है। यह केवल ज्ञात की लालसा है जो भाषा की छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। यहाँ आलोचक के तर्क बड़े सटीक और पैने हैं और भाषा की छिपाने वाली वृत्ति की समझ बहुत बढ़िया है। आधुनिक आलोचना ने छायावादी काव्य में यह विशेषता परिलक्षित की है, जिसका कुछ संकेत छायावाद संबंधी आरंभिक विवेचन में दिया जा चुका है, कि रचनाकार की इस मनस्थिति में उदाहरण के लिए प्रसाद के आंसू में लौकिक और अलौकिक प्रेम का अंतर भाषा और अनुभूति दोनों में परस्पर विलीन हो जाता है। अर्थ और अनुभव के इस अद्वैत तक आचार्य शुक्ल नहीं पहुंचते। पृष्ठ संख्या 180 पर उन्हें बड़ा श्रेय इस बात का है कि सिद्धांत में अज्ञात की लालसा या अज्ञात के प्रति प्रेम को स्वीकार न करते हुए भी व्यवहार में इन मनस्थितियों का चित्रण करने वाले कवियों को सराहने में उन्होंने कसर नहीं रखी। निर्गुण सूफी कवियों में जायसी और आधुनिक छायावादी कवियों में प्रसाद तथा सुमित्रानंदन पंत का उन्होंने बड़ी आस्था के साथ विवेचन किया है। सगुण राम के उपासक तुलसी के साथ ही वे सूफी कवि जायसी को रखते हैं। उनकी दृष्टि में दोनों लगभग समतुल्य हैं। तुलसी को वे ऊंचा स्थान देते हैं तो इसलिए नहीं कि तुलसी सगुण मार्गी हैं और जायसी निर्गुण मार्गी, बल्कि इसलिए कि तुलसी का जीवन चित्रण जायसी की अपेक्षा व्यापक है। जैसी ग्रंथावली की विस्तृत भूमिका का समापन वे यूं करते हैं। प्रबंध क्षेत्र में तुलसीदास जी का जो सर्वोत्तम आसन है, उसका कारण यह है कि वीरता प्रेम आदि जीवन का कोई एक पक्ष ही लेकर उन्होंने संपूर्ण जीवन को लिया है और उसके भीतर आने वाली अनेक दिशाओं के प्रति अपनी गहरी अनुभूति का परिचय दिया है। जैसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। समग्र महत्व की दृष्टि से जो क्रम आचार्य शुक्ल ने तुलसी और जायसी को लेकर स्थापित किया है, कुछ वैसा ही महत्व क्रम उन्होंने भक्ति काव्य और छायावादी काव्य के बीच माना है। अपने इतिहास में वे 19 पृष्ठों में तुलसी का विवेचन करते हैं, जिसमें कवि का जीवन वृत्त, रचनाओं की प्रामाणिकता आदि सब कुछ शामिल है। और फिर 19 पृष्ठों के विस्तार में ही वे सुमित्रानंदन पंत के काव्य का विवेचन करते हैं, जहाँ जीवन वृत्त और पांडुलिपियों की प्रामाणिकता के उलझे प्रसंग कोई नहीं है। सुमित्रानंदन पंत को वे छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि इसलिए मानते हैं कि एक तो अपने अप्रस्तुत विधान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया, और दूसरे इसलिए कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। आलोचक के तर्क अपनी जगह बड़े पुष्ट और व्यवस्थित हैं। यह दूसरी बात है कि परवर्ती मूल्यांकन प्रसाद और निराला को अधिक महत्व देता है। बहरहाल यह 19 पृष्ठों का संयोग मात्र नहीं जो तुलसी और पंत को इतिहास की एक कोटि में रखता है, वरन गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से छायावाद के विवेचन यदि कहीं कम है तो केवल भक्ति काल से। आचार्य की दृष्टि में बड़े काव्य के लिए प्रबंध काव्य का बंधान होना चाहिए और छायावाद में यह कमी उन्हें कामायनी से पूरी होती दिखती है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद के चित्र प्रधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने न सिर्फ छायावाद की समझ में कोई बड़ी चूक नहीं की, बल्कि महत्वक्रम में उसे भक्ति काल के बाद ही स्थान दिया है। जैसी सूर तुलसी ही नहीं, प्रसाद निराला पंत महादेवी को भी अपनी ओर से पूरी सहानुभूति देने का यत्न उन्होंने बराबर किया, और रामचंद्र शुक्ल की आलोचना तथा इतिहास दृष्टि मूलतः उनके अपने युग के काव्य से निश्रित होती है, जिस आवश्यक संदर्भ के बिना कोई बड़ा आलोचक नहीं हो सकता। यह भी इस प्रसंग में अच्छी तरह समझा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना सामर्थ्य को ठीक ठीक परखने के लिए उनकी आलोचना भाषा का विश्लेषण आवश्यक है। आलोचना की भाषा अपने आप में एक कठिन और सुकुमार प्रक्रिया है। अनुभव और अर्थ के जिस संश्लेष को रचनाकार भाषा के अधिकतम सृजनात्मक रूप के सहारे व्यक्त करता है, उसे अपेक्षा सीधी सादी भाषा में विश्लेषित और व्याख्यायित करते रहने का दायित्व तो समीक्षक का है। आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, तो आलोचना फिर रचना के अर्थ का। आचार्य शुक्ल की आलोचना भाषा को जांचते समय देखा जा सकता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली विशिष्ट होते हुए भी पारिभाषिक नहीं बनती, तभी वह रचना के अनुभव को नए और सार्थक ढंग से पकड़ पाती है। संश्लिष्ट चित्रण, विरुद्धों का सामंजस्य, लोक मंगल उनके कुछ ऐसे ही नए और विशिष्ट प्रयोग हैं। आलोचना भाषा के सामान्य विधान में आचार्य शुक्ल की सावधानी समर्थ कवियों की काव्यात्मक भाषा का स्मरण दिलाती है। एक अच्छा उदाहरण मिलता है जहां उन्होंने जनता और लोक शब्दों के बीच विवेक किया है। जनता शब्द के अंतर्गत समाज के ऊंचे नीचे विविध वर्ग सिमट आते हैं। लोक से समाज के पिछड़े वर्ग का बोध अधिक होता है। साहित्य की रचना प्रक्रिया का इतिहास में विवेचन करते समय वे जनता का योगदान रेखांकित करते हैं और उसके प्रयोजन स्वरूप लोक को सामने रखते हैं। इतिहास के प्रवाह की व्याख्या में 5 पदों से बनी लंबी संयुक्त क्रिया परिवर्तन होता चला जाता है आलोचना भाषा में सावधान प्रयोग का एक और अच्छा प्रमाण है। काव्य में नाद सौंदर्य का महत्व स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यह वाक्य कविता के वैशिष्ट्य की व्याख्या करते हुए स्वयं आलोचना भाषा में नाद सौंदर्य का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। काव्य में शब्दों का चुनाव, आरोह अवरोह का क्रम और एक सांस में वाक्य पूरा हो जाने की स्थिति, ये सारे तत्व मिलकर इस ऊपर से दिखने वाली उक्ति को एक गहरी अनुभूति में बदल देते हैं। कविता की आयु का लाक्षणिक प्रयोग भी इस प्रक्रिया में सहायक हुआ है। इसी प्रकार रचना के अर्थ संश्लेष की व्याख्या करते समय आचार्य शुक्ल कई बार ऐसे प्रयोग करते हैं जिन्हें हम आलोचना बिंब कह सकते हैं। इस तरह के प्रयोगों में छायावादी काव्य विशेषतर प्रसाद का विवेचन करते समय मधुचर्या शब्द देखने योग्य है। इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। यहाँ एक शब्द मधुचर्या के माध्यम से आलोचक ने प्रसाद काव्य में अलसता, खुमार, सलज्जता के संश्लिष्ट वातावरण को एक साथ उजागर करने का यत्न किया है और दूसरी ओर कवि द्वारा मधु शब्द के व्यापक प्रयोग पर कटाक्ष भी किया है। एक ऐसा ही प्रयोग है जहां अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को उन्होंने आध्यात्मिक घटना कहा है। इसी प्रकार सूर द्वारा चित्रित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया गया है। भावों और मनोविकारों संबंधी निबंध जो आलोचक के साहित्य चिंतन की पुष्ट आधारभूमि बनाते हैं समाज शैली और संश्लिष्ट शब्द प्रयोगों से नाना रूपों में संपन्न है। इस दृष्टि से क्रोध निबंध में वैर और क्रोध का अंतर जिस प्रकार किया गया है वह अविस्मरणीय है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। किशोर पाठ से लेकर विश्वविद्यालय और जीवन के खुले विश्वविद्यालय तक यह वाक्य अपने बिंब विधान के कारण अनेक स्तरों पर खुलता है। सावधान शब्द प्रयोग, नाद सौंदर्य और बिंब विधान, साधारणतः काव्य भाषा के ये गुण रामचंद्र शुक्ल की आलोचना भाषा में पाए जाते हैं। सामान्य आलोचक अपनी प्रभाववादी शैली में कविता की व्याख्या करने का अपर्याप्त यत्न करते रहे, जबकि आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचना भाषा में काव्य भाषा के महत्वपूर्ण तत्वों का समर्थ प्रयोग करके रचना के अर्थ को अधिकाधिक संवर्धित किया है। और उनकी इस भाषा के ही कारण यह संभव हुआ कि आलोचक ने बार बार बड़े कवियों की रचना में जैसे आत्म प्रक्षेप किया हो। तुलसीदास को पढ़ते समय अब आचार्य शुक्ल की समीक्षा उस पाठ का अंग हो गई है। यह विचित्र बात है कि मध्यकालीन शेपककारों के शेपक हम सावधानी से बीन कर मूल रचना से अलग कर देते, पृष्ठ संख्या 182 है, जबकि बड़े समीक्षक की समीक्षा कालांतर में अज्ञात भाव से रचना के भीतर समाहित हो जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों परंपराओं से विचार सामग्री ली, पर आतंकित वे किसी से नहीं हुए। इस प्रसंग में समन्वय साधना के बजाय उनकी आलोचना प्रक्रिया उन्हीं के शब्दों में विरुद्धों के सामंजस्य से अधिक निकट है। दूसरी ओर परवर्ती आलोचना के कुछ बीज उसके विकास की संभावना को पूरी तरह उन्मुक्त रखे उनके चिंतन में मिल जाते हैं। जैसे संपूर्ण विवेचन क्रम में रचना का महत्व, काव्य भाषा का केंद्रीय आधार और बिंब प्रक्रिया की विशिष्ट भूमिका, साहित्य की प्राचीन परंपरा और नई संभावना को यूं रामचंद्र शुक्ल ने बड़े निर्मल भाव से जोड़ा है। इस युग की आलोचना को विकसित करने में दो विद्वानों का योग और अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। एक बाबू श्याम सुंदर दास जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रामचंद्र शुक्ल के वरिष्ठ सहयोगी थे और जिन्होंने उनके व्यावहारिक जीवन क्रम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरे नंद दुलारे वाजपेयी जो आचार्य शुक्ल के शिष्य थे काशी के उसी विभाग में। इस दृष्टि से इस एक विश्वविद्यालयी विभाग का हिंदी आलोचना के विकास में गुणात्मक महत्व है, विशेषतः जब परवर्ती आलोचना के क्षेत्र में यहीं के हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका पर हम और ध्यान देते हैं। श्याम सुंदर दास आलोचना के इस रूप का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे कभी कभी कटाक्ष में अध्यापकीय आलोचना कहा जाता है। यहाँ आलोचना में ज्ञान और विद्वत्ता अधिक पर सृजनात्मक क्षमता न्यून होती है। बाबू साहब को तो यूं भी नए बने हिंदी विभाग के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी थी। साहित्य आलोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य जैसे ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखे गए थे जिनकी शैली स्पष्ट और विवेचन स्वच्छ है। मौलिक विवेचन की न यहाँ संभावना है और न शायद अपेक्षा ही। आचार्य शुक्ल की इतिहास में टिप्पणी जो कठोर लगती हुई भी गलत नहीं कही जा सकती, इस संदर्भ में यूं है। शिक्षा प्रयोगी तीन पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की ख्याति छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में है। अपने गुरु रामचंद्र शुक्ल की आलोचना क्षमता से वे प्रभावित हैं, पर छायावादी कवियों विशेषतः प्रसाद और निराला के जीवंत संपर्क में रहकर उनके छायावाद संबंधी मूल्यांकन से असंतुष्ट भी हैं। 1929 में अपने एक पत्र में वे निराला को लिखते हैं, भारतीय काव्य दृष्टि पर इधर एक व्याख्यान सुकुल जी का हुआ था, पाखंड प्रतिषेध को गद्य का रूप मिल गया है, एक पूरी किताब लिख चुके हैं जिसमें सिद्ध किया गया है कि रहस्यवाद की कविता अभारतीय है, छप रही है, उसकी थोड़ी सी बेवकूफियां मेरी समझ में भी आई हैं, सब जाने पर आप देखेंगे ही। स्मरणीय है कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद के विरोध में आचार्य शुक्ल की कवित्व कुछ समय पूर्व प्रकाशित हो चुके थे, जिनमें से कुछ का उद्धरण उनकी आलोचना के प्रसंग में दिया जा चुका है। वाजपेयी का आलोचना कर्म अपनी ऊपरी रूपरेखा में रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता है। उन्होंने भी सूरसागर और रामचरितमानस का संपादन किया, सूरदास पर स्वतंत्र अध्ययन प्रस्तुत किया और छायावादी कवि और काव्य पर विशेष रूप से लिखा, पर उनकी लेखन शैली स्फुट रही। आचार्य शुक्ल ने यदि प्रबंध काव्य को महत्व दिया तो उनकी आलोचना में भी वैसी ही व्यवस्था और क्रमपरकता झलकती है। नंद दुलारे वाजपेयी में अपने पृष्ठ संख्या 183 आलोच्य को लेकर ऐसी निष्ठा नहीं दिखती। आधुनिक काव्य के विकास की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक व्याख्या और उसका विवेचन वाजपेयी का विशिष्ट क्षेत्र है। द्विवेदी युग में आधुनिक खड़ी बोली कविता के उदय से आरंभ करके छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के विकास सरणियों तक को समझने समझाने का यत्न उनके आलोचनात्मक अध्ययन की आधार भूमि है। यह अलग बात है कि इस सारी प्रक्रिया में उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट सहानुभूति छायावादी काव्य के साथ रही है। इसके बावजूद छायावाद पूर्व खड़ी बोली काव्य का दाय उन्होंने सही रूप में स्वीकार किया है। कविता में आधुनिक युग के प्रवर्तन की प्रक्रिया भी मैथिली शरणगुप्त के काल से आरंभ हुई मानते हैं। आधुनिक युग का आरंभ राष्ट्र जागरण की चेतना के साथ, जिसके प्रथम वाहक कवि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक भाव बोध को यदि इतिहास चक्र और उसके परिचालन की सजग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ माना जाए तो हिंदी साहित्य के प्रसंग में नवीन युग का अवतरण राष्ट्र चेतना के उदय से मानना बिल्कुल संगत है। यही कारण है कि वे रत्नाकर के संबंध में लिखते हैं, यह काव्य सुशोभन और गौरवास्पद हो सकता है किंतु वह युग का अनिवार्य काव्य नहीं कहा जा सकता। आधुनिक युग की व्यवहारिक पहचान में नंद दुलारे वाजपेयी ने कई प्रवृत्तियों को रेखांकित किया और उनमें से कई को साकेत में परिलक्षित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरणगुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु मानकर साकेत की भूमिका में उन्हें स्मरण किया है। इसका औचित्य जितना व्यवहारिक स्तर पर है उतना ही रचनात्मक स्तर पर। सूक्ष्म कवित्व के अभाव की दबी जबान शिकायत करते हुए आलोचक साकेत को नव युग का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहने के बदले उसे युग की आरंभिक कृति कहना पसंद करता है। प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ का स्थान उसने ठीक ही कामायनी को देना उचित समझा है। साकेत की शक्ति और सीमा का यह बड़ा आनुपातिक विवेचन है। छायावाद के जटिल और संश्लिष्ट सांस्कृतिक उन्मेष की तुलना में वाजपेयी को मैथिली शरणगुप्त और प्रेमचंद का कृतित्व आरंभिक राष्ट्रीयता के सीधी सरल अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। जयशंकर प्रसाद के आरंभिक निबंध में वे लिखते हैं, बड़े जीवन चक्रों को हाथ में लेना, पेचीदा भावधाराओं और सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उठी हुई समस्याओं का निरूपण करना व्यक्ति, देश और जगत के जीवन के वृहद छाया आलोकों को उद्घाटित कर सकना। सारांश यह है कि जीवन के गहरे और बहुमुखी घात प्रतिघातों और विस्तृत जीवन दशाओं में पद पद पर आने वाले उद्वेलनों को चित्रित करना, उन्हें संभालना और अपनी कला में उन सबको सजीव करना गुप्त और प्रेमचंद की साहित्यिक सीमा के बाहर है। साहित्य की जिन गहरी संभावनाओं का अभाव समीक्षक ने मैथिली शरणगुप्त के काव्य में लक्षित किया है, वे प्रकारांतर से उसके अनुसार छायावाद और उसकी शीर्ष कृति कामायनी की प्रतिनिधि विशेषताएं हैं। अपने समीक्षा कार्य को वाजपेयी मुख्यतः और प्रथमतः छायावाद से संबंध मानते हैं। अपनी पहली मुख्य रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के प्रसंग में वे कहते हैं, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद, निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। नया साहित्य, नए प्रश्न, निकस। छायावाद की व्याख्या करते हुए आलोचक अपना दृष्टिकोण आचार्य शुक्ल से भिन्न रूप में प्रस्तुत करता है। उसका कहना है, इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। पृष्ठ संख्या 184। जयशंकर प्रसाद। इस नूतन सांस्कृतिक मनोभावना और स्वतंत्र दर्शन की नियोजना की व्याख्या उन्होंने कई प्रसंगों में की है। वे छायावाद का एक आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं, परंतु उनकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। छायावादोत्तर परिदृश्य पर समीक्षक ने तीन धाराओं को स्पष्ट परिलक्षित किया है, परवर्ती प्रगीत, दूसरी प्रणाली प्रयोगवादियों की, तीसरी प्रणाली सामाजिक प्रगतिवादियों की। प्रगतिवादी साहित्य के नेतृत्व में पहला नाम अज्ञेय का दिया गया है, फिर नरोत्तम, डॉक्टर रामविलास, शिवदान सिंह आदि का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की विज्ञप्ति में व्यंग के साथ टिप्पणी यो है, यही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है, पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। यानी प्रगतिवाद की व्याख्या किसानों मजदूरों के मध्य वर्ग के कोरी बौद्धिक सहानुभूति के रूप में दी गई है। कुछ कुछ वैसे ही जैसे आचार्य शुक्ल ने महादेवी के काव्य के संबंध में प्रश्न उठाया था, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। प्रयोगवाद को समीक्षक बच्चन जैसे प्रगतिवादी कवियों की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। आधुनिक साहित्य नई कविता। बच्चन यो छायावाद से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में रूपांतरण की अवधि के कवि दिखते हैं, जिनके भाषागत प्रयोगों को समीक्षक ने उत्साह के साथ रेखांकित किया है और जिनकी अनुभूति की गहराई छायावादी कवियों से अधिक मानी है। इस दूसरी मान्यता से सहमत हो पाना निश्चय ही कठिन होगा। यहाँ आत्मपरकता और अनुभूति की गहराई में समीक्षक ने कोई भेद नहीं समझा और फलतः छायावादी काव्य के प्रति अनजाने में ही एक बड़ा अन्याय कर डाला, फिर एक सिलसिला सा बन गया। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि काव्य में छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने पहले अंचल और बाद को बच्चन के आने पर मानी है। विज्ञप्ति।